हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ किरण और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट संजय ठाकुर जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है संजय जी।
थैंक यू किरण।
आज जिस एक्ट को हमने लिया है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इस पे होंगी ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां देंगे आपको संजय ठाकुर जी कि हिंदू मैरिज एक्ट असल में किन किन चीजों को कवर करता है, किन किन और धर्मों को कवर करता है।
सबसे पहले तो किरण मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वेयर एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न्ड, ये एक संस्कार गिना जाता है।
जी,
जिस तरह की मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट गिनी जाती है।
जी,
तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको हमें समझना चाहिए। जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है तो इनकेस अगर कोई आदमी बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है और ऑफकोर्स हिंदू है, तो कल अगर इन लोगों को अपना डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है या जो इनकी मैरिज हो रही है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही गिनी जाएगी।
जी, यानी शादी हो रही है या फिर डाइवोर्स हो रहा है वो सारा गिना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो।
बिल्कुल ठीक
जी, और हिंदू तो है ही। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में री मैरिज का कॉन्सेप्ट कब आया?
ऐसा है कि री मैरिज एक्ट जो है वो लीगलाइज हुई 1856 के अंदर।
ओके,
लेकिन किरण आपको जान के एक चीज की हैरानी होगी, 1856 का जो ये एक्ट था इसके अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स नहीं था।
जी,
तो डिवोर्स जो है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बदलते एनवायरमेंट्स को पहचानते हुए,
देखते हुए, समझते हुए जी
ये पार्लियामेंट ने बाद में इंट्रोड्यूस किया है।
जी,
अदरवाइज डिवोर्स नाम की चीज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पहले थी ही नहीं।
यानी कि एक बार शादी हो गई, आप एक बार गठबंधन में बंध गए तो आप उसे तोड़ नहीं सकते।
जी
जी, तो री मैरिज तो आ गई थी 1856 में, लेकिन डिवोर्स का सिस्टम शुरू में नहीं था, इनिशियली नहीं था, बाद में समय को देखते हुए ये ऐड किया गया।
किरण, इसकी एक बड़ी खास वजह है, ऐसा है कि एक बारी दो लोग अगर आपस में बंध गए हैं,
जी,
इवन आज की डेट में भी कोर्ट की पूरी कोशिश होती है कि अगर आपस में इन लोगों का समझौता हो के ये अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं
अगर उसे खत्म कर देते हैं,
एमिकेबली सेटल कर लेते हैं,
फाइन,
तो बहुत बढ़िया। लेकिन जहां पर कोई शादी बिल्कुल इस कगार पे पहुंच गई है कि वो वापस नहीं बन सकती,
जी,
तो शायद ये एक ह्यूमन राइट का भी एक, इसको आप उसके अंदर ले सकते हैं कि ये एक हक बनता है फिर दोनों लोगों का कि अगर वो अगर साथ नहीं रह सकते तो ठीक है, अब फिर उनको अलग रहने की इजाजत दे दी जाए।
जी, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट भी आते हैं कि जहाँ पर एक इंसान ज़्यादा एक्सप्लॉइट अपने आप को समझ रहा है या फिर वो अपने अधिकारों को छिनता हुआ देख रहा है तो वहाँ पर डाइवोर्स देने की सिचुएशन में होता है कोर्ट।
किरण, देयर इज अ डिफरेंस।
जी,
समझ रहा है या हो रहा है।
जी,
जहाँ तक समझने की बात है कोर्ट पूरी कोशिश ये करती है कि ऐसे डाइवोर्सेस जो हैं, अगर कोई आदमी सिर्फ एक थॉट प्रोसेस के अंदर ही कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो कॉन्सिलेशन सेंटर्स बना रखे हैं कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई चीज, अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं जो कि शायद आप आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वो आपकी मदद करते हैं।
जी,
जिसके अंदर इवन कोर्ट भी आपको ऑर्डर करता है कॉन्सिलेशन सेंटर में जाने के लिए और उनके साथ बात करने के लिए। लेकिन जहां पर वाकई में आपके साथ या आपके अधिकारों का कुछ हनन हो रहा है, जिस तरह आपको मेंटली अब्यूज किया जा रहा है या
आपके साथ वायलेंस हो रहा है,
वायलेंस को
मारा पीटा जा रहा है,
वायलेंस सिर्फ मारना पीटना नहीं होता है, इवन मेंटली टॉर्चर करने को भी वायलेंस की परिभाषा के अंदर ही लिया जाता
जी,
है
जी,
तो ऐसी स्थितियों के अंदर ही कोर्ट आपको डिवोर्स प्रोवाइड करता है। और वैसे स्थितियां बहुत सारी हैं जो कि मैं जरूर बताना चाहूंगा।
जी, आपसे हम सारी स्थितियां पूछेंगे, लेकिन आपने जो कॉन्सिलेशन सेंटर्स के बारे में हमें बताया, इसका मतलब ये कि वहां पर जो स्पाउस हैं दोनों, उनको वहां पे काउंसलिंग की जाती है उनकी और उन्हें ये समझाया जाने की कोशिश की जाती है कि आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम्स।
जी, इट इज ऑलवेज गुड कि अगर एक न्यूट्रल आदमी बीच में बैठ के अगर आपसे बात करे, आपकी समस्याएं सुने
जी,
और आपको समझाने की कोशिश करे, जो कि कॉन्सिलेशन सेंटर का असलियत में काम है
जी,
तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई गलती करते हैं और आपको खुद नहीं पता चलता
जी,
तो इन कॉन्सिलेशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा मदद हो जाती है कि कुछ चीजें जो छोटी छोटी बातों पर,
छोटी छोटी ईगोज या बातें जो है, जो पनपी है, उन्हें खत्म किया जा सकता है,
क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बन जाती हैं और जिस समय बड़ी बन जाती हैं तो लोग फिर कोर्ट की तरफ रुख करते हैं।
जी संजय जी, रीमैरिज के बारे में बात की आपने, कॉन्सिलेशन सेंटर्स के बारे में बताया, लेकिन एक चीज ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन दो लोग शादी कर सकते हैं आपस में और कौन दो लोग शादी नहीं कर सकते?
किरण, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ पर शादी की बात आती है तो सबसे पहले तो दोनों, लड़की और लड़का है, दोनों को बालिग होना चाहिए।
जी,
जिसके अंदर लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
जी,
पहली बात। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स दे रखी हैं, जिसके बीच में, जिन लोगों के बीच में शादियां नहीं हो सकती, जिस तरह बहन भाई, फर्स्ट कजन्स, चाचा भतीजी या मामा भांजी, इस तरह से। तो ये शादियां जो हैं ये कोर्ट की तरफ से मान्य नहीं है।
जी।
उसके बाद जिस समय आपका स्पाउस, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, वो जिंदा है और आपके साथ उनकी वैलिड मैरिज हो रखी है और आपका डिवोर्स उनके साथ नहीं हुआ, तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं कर सकते।
जी संजय जी, आपने अभी हमें बताया कि कौन सी मैरिजेस हो सकती हैं और किस तरह के दो लोग जो हैं आपस में शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह की मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैलिड मानी जाती है? कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ मंदिर में शादी कर लेते हैं, या फिर कहीं और, जैसे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली या कहीं और शादी कर ली, और फिर उसको वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा?
किरण, उसको 100% वैलिड माना जाएगा। अगर आप मंदिर में या गुरुद्वारा में अगर शादी करते हैं और पंडित आपकी शादी करवाता है या गुरुद्वारे में ग्रंथी आपकी शादी करवाते हैं,
जी
ठीक है, बल्कि वो पूरा उसका सर्टिफिकेट जो है शादी का आपको इशू करके देते हैं,
जी,
और वो शादी का जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह पर मान्य है और कोर्ट उसको पूरी पूरी मान्यता देती है।
जी, तो उसके बाद ऐसा कुछ जरूरी है कि उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में कुछ स्टैंप लगवाना या रजिस्टर करवाना या इस तरह की कोई और चीज?
ऐसा है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात है,
जी,
आमतौर पर ये लोग करवाते हैं जिन्होंने बाहर विदेशों में जाना हो,
जी,
और उसके बाद अपने पासपोर्ट के अंदर चेंज करवाना हो, तो रजिस्ट्रेशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं।
जी,
जिस तरह रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपकी शादी भी रजिस्टर करती है, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है मंदिर में या गुरुद्वारे में, आप उसका सर्टिफिकेट ले जाकर वहां पर रजिस्ट्री में दीजिए, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 आपकी शादी जो है वो रजिस्टर कर दी जाएगी, ताकि आपको जहां जहां पर अपने नाम चेंजेस करवाने हैं, जिस तरह राशन कार्ड हो गया या आपका पासपोर्ट हो गया, और इवन आपने जिस समय वीजा लेना है एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप अपनी शादी को वहां पर रजिस्टर करवा के उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।
जी, इसका मतलब मंदिरों या गुरुद्वारों में हुई शादी जो है वो मान्य मानी जाती है?
बिल्कुल
जी, क्योंकि वो सभी रीति रिवाजों के तहत ही होती है।
बिल्कुल
जी, और इसी के साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी हिंदी मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, क्या क्या और बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, जो हमें आपको बतानी जरूरी हैं, तो इसी के लिए बैठे हैं हमारे साथ एडवोकेट संजय ठाकुर जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। सर, रीजन ऑफ डाइवोर्स क्या हो सकते हैं अगर दो इंसान आपस में तलाक लेना चाहते हैं, तो कोर्ट को किस तरह के ठोस कारण चाहिए होते हैं उन्हें डाइवोर्स देने के?
वेल किरण, जहां पर डिवोर्स की रीजंस की बात है, डिवोर्स को अप्लाई करने के लिए रीजंस तो एन नंबर्स हो सकते हैं, ढेरों हो सकते हैं।
जी,
लेकिन बात वो करें कि कोर्ट किन किन चीजों को मान्यता देता है, कि अगर ये रीजन है तो हाँ ये रीजन गिने जाएंगे डिवोर्स के लिए।
जी,
तो सबसे पहली बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स,
इन्हें कंसिडर जरूर किया जाएगा।
बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसके अंदर एक स्पाउस किसी और इंसान से अपने संबंध बनाता है,
जी,
ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ क्रुएलिटी से पेश आता है, और मैंने एक चीज ये पहले भी बताई थी कि जहां क्रुएलिटी की बात आ रही है, इट इज नॉट द फिजिकल क्रुएलिटी, फिजिकल मतलब मार, हाथापाई और लड़ाई, बल्कि इनकेस अगर आप किसी का जीना हराम कर देते हैं, इसको भी क्रुएलिटी में गिना जाता है, मेंटल क्रुएलिटी के अंदर। उसके बाद इन केस अगर आपने अपने स्पाउस को छोड़ दिया है साल से ज्यादा से,
जी,
और आपका जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर भी आपका एमिकेबल अपने साथ सेटलमेंट नहीं हो पाया, दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आपका जो डिवोर्स है उसको कोर्ट मान्यता दे, क्योंकि वो देखती है तब कि इतना करने के बाद भी ये लोग आपस में नहीं निभा पा रहे।
जी,
उसके बाद अब कुछ चीजें, जिस तरह पागलपन, अगर एक स्पाउस किसी पागलपन के शिकार है, जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर लिया जाएगा, तो वो भी एक रीजन बनता है
जी।
उसके बाद कोई ऐसी बीमारी से अगर एक स्पाउस सफर कर रहा है जो उसका क्योर नहीं हो सकता, ये भी एक रीजन है। अगर मियां बीबी के आपस में जो संबंध है वो नहीं बन सकते हैं, तो ये एक अगेन बहुत बड़ा वजह है
जी।
अगर कोई एक स्पाउस साधु या साध्वी बन गए हैं और उन्होंने अपनी मोह माया बिल्कुल त्याग दी है
जी,
ये अगेन रीजन है डिवोर्स का
जी।
और आखिरी रीजन जो मैं कहूंगा वो ये है कि अगर 7 साल तक आपका स्पाउस के साथ कोई संपर्क ना हो और आपको ये भी ना पता चले कि वो कहाँ रह रहा है, जिंदा है या नहीं है, तो ये एक और रीजन है जिसको कोर्ट कंसीडर करेगी डिवोर्स के लिए।
7 years जी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे कि डाइवोर्स मिलने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं
जी।
तो ये जो आपने अभी मुझे रीजंस बताए हैं ये डाइवोर्स के हैं, ये आपने मुझे बताया, लेकिन आपने एक टर्म यूज की जुडिशियल सेपरेशन
जी,
आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जुडिशियल सेपरेशन है वो ये कि एक कपल जो है वो अलग अलग रहने लग जाए, बीवी कहीं पर पति कहीं पर।
किरण, इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, अभी आपने एक चीज कही कि संभावनाएं बढ़ जाती हैं
जी,
मैं संभावनाएं बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, दीज आर द वैलिड ग्राउंड्स, मतलब ये वो तथ्य हैं जिनको कोर्ट कंसीडर करता है किसी भी डिवोर्स को मान्य करने के लिए
जी,
पहली बात। दूसरी बात, जो आप जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन एक हक है किसी भी एक स्पाउस का अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसका मतलब ये आ रहा है कि इन केस अगर मियां और बीवी मतलब स्पाउस अलग अलग रह रहे हैं किसी भी वजह से, ठीक है, उसके अंदर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस जो है वो अपना फाइल कर सकता है, ताकि वो जो भी उसके पति या पत्नी के राइट्स हैं वो उसको ले पाए
जी।
और कोर्ट कंसिडर करने के बाद अगर ये ऑर्डर दे देती है कि कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट किया जाए और दूसरा इंसान इनकेस अगर उस कोर्ट की बातों को नहीं मानता, तो उस केस के अंदर इवन जो ना मानने वाली जो पार्टी है उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है
जी।
और इवन 6 महीने के बाद उसके नीलामी के ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं सजा के तौर पे
जी।
पहली बात। दूसरी बात, जहां पर अब बात आती है जुडिशियल सेपरेशन की, अब जुडिशियल सेपरेशन एक राइट है किसी भी एक स्पाउस का कि इन केस अगर उसको जो भी मैंने डिवोर्स की रीजंस बताए जिनको कोर्ट मान्यता देता है, इन केस अगर इनमें से किसी एक पर भी अगर वो लागू होते हैं तो उन्हीं बेसिस के ऊपर जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से पहले दिया जा सकता है
जी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि द पॉइंट्स जिनके ऊपर जुडिशियल सेपरेशन दिया जाएगा या जिन पर डिवोर्स दिया जाता है वो सेम है,
वो सेम ही होते हैं
जी।
आपने जुडिशियल सेपरेशन की जो बात की, इसका मतलब ये एक टाइम पीरियड है दिया जा रहा है स्पाउसेस को कि वो अगर चाहें तो बाद में एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं।
मैं किरण इसको इस हिसाब से कहूंगा कि जुडिशियल सेपरेशन का मतलब हमें इस हिसाब से लेना चाहिए कि पहली बात कि कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, एक तो उसका हक जो है वो खत्म हो जाता है किसी भी स्पाउस का, साथ के साथ ये एक टाइम है जो कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आपको अपनी जितनी भी गलत फहमियां अगर हैं तो वो एक सुधारने का कोर्ट आपको टाइम दे रही है
जी,
कि बिना एक दूसरे पे हक जमाए आप एक दूसरे से मिलें, बात करें और इनकेस अगर शादी को बचाया जा सकता है
तो उस
हाँ
जी। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि एडवोकेट संजय ठाकुर जी ने हमें बताई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। बात हो रही है आज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर और इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मुद्दे हैं जो कि छूट गए हैं, लेकिन हम उन्हें भी कवर करेंगे। जितनी भी बातें हुई मुझे आशा है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होंगी, लेकिन अभी बात कुछ औरतों के बारे में। तो सर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग औरतों को क्या अधिकार दिए जाते हैं?
किरण, ऐसा है कि औरतों को कोर्ट ने बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं, क्योंकि अगर आप एक स्थिति देखें आज की डेट के अंदर जितनी अर्बन सिटीज हैं उसके अंदर तो औरतें काम कर रही हैं, अपना खुद कमा रही हैं, और शायद कई कई जगह पर तो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा कमा रही है। लेकिन अगर हम छोटे टाउनशिप्स की बात करें, गांव खेड़े की बात करें, तो वहां पर अगर देखा जाए तो स्थिति जो है वो पुराने वाली ही है, जहां ये समझा जाता है कि हस्बैंड कमाता है और बीवी घर संभालती है।
घर संभालती है, जी
जी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून ने काफी व्यवस्थाएं जो हैं वो औरतों के लिए की हैं, जिनको मैं आपको अब गिनवाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला हक है एलिमनी का, जिसको आप मंथली खर्चा भी कह सकते हैं।
जी।
तो उसके अंदर ये है कि इन केस अगर बीवी कमाती नहीं है, अपना जो पालन पोषण है वो नहीं कर सकती है, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड केस डाल सकती है, जिसके अंदर वो अपने हस्बैंड से महीने का खर्चा मांग सकती है।
जी।
पहली बात। दूसरी चीज, जहां पर बात आती है कि लड़के के घर वाले लड़की के ऊपर क्रुएलिटी, जुल्म, जहां पर हाथ उठाना, गाली या इवन मेंटल टॉर्चर करना, इन चीजों के अंदर लड़की को हक है कि अंडर 498A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो अपना केस डाल सकती है, पुलिस वालों के साथ रजिस्टर करवा सकती है। और सिर्फ वही नहीं, इवन लड़की के जो घर वाले हैं वो भी ये केस डाल सकते हैं, जिसके अंदर पुलिस के इंक्वायरी के बाद जो भी लड़के के घर वाले हैं वो अरेस्ट होंगे और उनको बेल अपनी करवानी पड़ेगी।
जी।
और इसके अंदर अगर ये प्रूव हो जाता है कि वाकई में लड़के के घर वालों ने लड़की को सताया है, तंग किया है, मारा है, पीटा है, गालियां दी हैं, तो उसके अंदर कड़ी सजा
उन्हें दी जा सकती है,
कड़ी सजा दी जा सकती है, जिसके अंदर जेल, पैसे या दोनों, ये सारी सजाएं हैं। तीसरा आ जाता है अगर डॉरी की मांग करते हैं या डॉरी लेते हैं, क्योंकि डॉरी लेना और देना
दोनों ही कानूनन अपराध है।
जी
जी।
तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि डॉरी की मांग हुई है या डॉरी ली दी गई है या किसी ने जोर जबरदस्ती से डॉरी ली है,
जी,
तो उसके ऊपर भी कड़ी सजा या फाइन या दोनों है।
जी
ठीक है।
बाकी आपने यहाँ पे डॉरी की बात की, और हमारे समाज की हम जहाँ तक बात करते हैं वहाँ पे अक्सर गिफ्ट के तौर पर सामान लिया जाता है, दिया जाता है, शादी में भी बहुत पैसा लगाया जाता है। तो इन केस अगर डाइवोर्स होता है तो वहाँ पर जो पैसा शादी में लगाया गया है या फिर जो सामान दिया गया है या लिया गया है, तो उसकी कीमत भी जोड़कर क्या ली जा सकती है?
बिल्कुल किरण, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जितना भी खर्चा है, क्योंकि आम तौर पे यही होता है कि लड़के वालों की मांग होती है कि इनकेस अगर वो शादी कर रहे हैं, उनका रुतबा इतना है
जी,
और कहा यह जाता है कि साहब लड़के वालों की तरफ से जो भी आएंगे उन्होंने तो एक ही बार आना है, खाना बढ़िया होना चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, तो लड़की वालों को चाहते ना चाहते अपनी जेब देखते हुए भी उससे बाहर जाके खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आपके पास उस सब चीज़ों के बिल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आप ये कोर्ट के अंदर डिमांड कर सकते हैं।
जी। तो संजय ठाकुर जी, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है, और हमारे समाज में ये सारी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, तो इसीलिए आपको ये सारे एक्ट और इनके अंदर की जो सच्चाई है या फिर जो भी तथ्य हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ पर हम सामान के लेन देन की बात कर रहे हैं, दहेज की बात कर रहे हैं, वहीं पर बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी?
किरण, मैं खुद पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ कि बच्चों की बात करनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू।
जी।
क्योंकि आज के बच्चे कल का हमारा भविष्य है, और इसी की वजह से हम, हमारा देश तरक्की करेगा।
जी।
और इस चीज को कोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली लेती है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि बच्चों की कस्टडी किस हिसाब से रूल होती है। इन केस अगर बच्चा 3 साल या 3 साल से छोटा है, तो उसका जो हक बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ माँ का। उसकी वजह यह है कि 3 साल के बच्चे की कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि माँ के अलावा कोई और नहीं फीड कर सकता, तो उसके अंदर अनडिस्प्यूटेडली माँ का हक बच्चे के ऊपर बनता है। वेरस जहां तक फादर की बात आती है, इंडियन वार्ड एंड गार्जियन एक्ट जो है वो फादर को नेचुरल गार्जियन मानता है, बट कोर्ट के आगे हमेशा एक ही इशू होता है कि बच्चा की अपनी विशेष क्या है, पहली बात। नंबर दो, किस इंसान के साथ बच्चे का भविष्य जो है वो सिक्योर रहेगा। तो जिस समय हम गार्जियन वार्ड एक्ट के अंदर अपना केस डालते हैं
जी,
तो उसके अंदर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बच्चे का भविष्य किसके साथ ज्यादा सिक्योर है, कौन इसको ज्यादा अच्छा नागरिक बना पाएगा, पहली बात। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि बच्चे की खुद की विशेष इसमें क्या है।
जी, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर मियाँ बीवी दोनों ही अच्छा कमाते हैं, दोनों ही अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन उनके आपस में ही कुछ ऐसे ग्रजेस हैं, पर्सनल ग्रजेस हैं जिनसे कि वो तलाक ले रहे हैं, ऐसे में बच्चा भी अभी इतना मैच्योर अगर नहीं है कि वो अपनी विश बता सके ठीक से, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कैसे सोल्यूशन लेगी?
किरण, मैंने जैसे पहले बताया कि नेचुरल गार्जियन जो है वो फादर को माना गया है
जी,
तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कंसीडरेशन जो है
फादर के पास जाएगी।
जी, पहली फादर के पास जाएगी, लेकिन इन केस अगर मदर ये प्रूव करती है कि फादर के पास ना तो इतना टाइम है ना वो देखभाल कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो उस अपील को या उनकी जो पिटीशन है उसको कंटेस्ट करके बच्चों की कस्टडी खुद ले सकती है।
जी, तो वहां पर जो मेहनत करने वाली बात है वो बीवी को करनी है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है
जी,
मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी बच्चों को लेने के लिए।
जी, तो इसमें मुझे जहाँ तक इस बात में थोड़ा सा फील हो रहा है वो ये कि शायद जो फादर है वो ज़्यादा एडवांटेज सिचुएशन में है।
एडवांटेज सिचुएशन कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप ये देखें कि जो सोच इसके पीछे रही होगी वो ऐसा है कि परिवेश हमारा ऐसा है कि इनकेस अगर डिपेंडेंसी अगर एक इंसान की है और उसके बाद और उसके सिर पे डिपेंडेंट्स आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या, इसीलिए जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर को माना गया।
जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर, और क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है तो आज बस इतना ही, लेकिन अगली बार हम आएंगे कुछ नई मुद्दों को लेकर, कुछ नए एक्ट्स को लेकर जिन पे और भी खुलकर चर्चा होगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।
थैंक यू किरण।
ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर एडवोकेट संजय ठाकुर जी, और इनसे और भी आगे आने वाली चर्चाएं जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन आज जो बात हुई वो हुई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई मुझे आशा है कि आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वाकई एक बेहतर परिवार बसाने के लिए दी जा रही है, ना कि तोड़ने के लिए, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूँ आपके साथ किरण, लेकिन अभी फिलहाल लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।